पिछले कुछ हफ्तों से हम इस बात पर अध्ययन कर रहे हैं कि पवित्र शास्त्र जो है परमेश्वर का वचन है और उसमें परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर के विचार है, परमेश्वर की योजनाएं हैं और प्रभु जो हमारे जीवन में करना चाहता है वो सब कुछ इस पवित्र शास्त्र में है और वो अटल है। आपको याद होगा कि हम इन दिनों में मसीह जीवन की बुनियादी बातों को सीख रहे हैं। कुछ बातें हम पहले भी सीख चुके हैं, फिर से सीख रहे हैं ताकि हम भूल ना जाए और ताकि हम अपने जीवन को देख सके कि क्या हम उन बातों के अनुसार चल भी रहे कि नहीं। होशिया नबी के पुस्तक में जो कि पुराने नियम में है, हमें एक चीज पढ़ने को या देखने को मिलती है। होशिया की पुस्तक 14 अध्याय का 6 पद को हम पढ़ेंगे, द बुक ऑफ होशाया चैप्टर 4 वर्स 6। ये पुराने नियम में है, डैनियल की पुस्तक के बाद आपको मिलेगी ये पुस्तक। इसमें लिखा है कि मेरा ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नष्ट हो गई है। माई पीपल आर डिस्ट्रॉयड बिकॉज दे लैक नॉलेज और माई नॉलेज। यानी परमेश्वर क्या कह रहा है कि परमेश्वर के विषय में ज्ञान ना होने के कारण, यानी हम उस बात को इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि परमेश्वर को नहीं पहचानने के कारण लोग नाश हो रहे हैं। परमेश्वर किसके बारे में बात कर रहे हैं? अपने लोगों के बारे में। मेरी प्रजा जो हिंदी में आप पढ़ रहे हैं, ये बहुत खूबसूरत शब्द है। इसका मतलब है कि परमेश्वर के अपने प्यारे लोग जिनको प्रभु परमेश्वर अपना समझते हैं। इस सारे जगत में जो लोग पाए जाते हैं ना, वो परमेश्वर की सृष्टि है लेकिन परमेश्वर के अपने नहीं है, परमेश्वर के घराने के नहीं है लेकिन हम है। उनके लिए परमेश्वर क्या कहता है कि वे मुझे नहीं जानते, मुझे नहीं पहचानते, इसलिए क्या हो रहा है उनके साथ? वो नाश होते जा रहे हैं और हम नहीं चाहेंगे ना कि हम उनमें हो जो नाश हुए जा रहे हैं। चाहेंगे? हम नहीं चाहेंगे ना, हम नहीं चाहेंगे कि हम उनमें उनकी गिनती में आए जो नष्ट हुए जा रहे हैं। हम चाहेंगे परमेश्वर हमारे लिए ये कहे कि ये लोग नाश नहीं हो रहे हैं क्योंकि ये मुझे पहचानते हैं। परमेश्वर को पहचानने के लिए परमेश्वर ने कुछ उपाय हमें दिए हैं, उनमें से एक है पवित्र शास्त्र। और इस पवित्र शास्त्र को समझने के लिए हमें पवित्र आत्मा भी दिया है, क्योंकि इस पवित्र शास्त्र को आप जानते हैं कि इस दिमाग से हम समझ नहीं सकते। अगर इस दिमाग से अगर हम समझ सकते हैं तो आज सारी दुनिया, खास करके जितने भी कम्युनिस्ट पाए जाते हैं विश्व में, वो सब परमेश्वर के होते, क्योंकि कम्युनिस्ट लोग, चाहे विश्वासी लोग पढ़े ना पढ़े, कम्युनिस्ट लोग हमेशा बाइबल पढ़ते हैं ये साबित करने के लिए कि परमेश्वर नहीं है, और उनको बाइबल की बातें समझ नहीं आती, हमें मालूम है। और जो मसीही विरोधी है वो भी बाइबल पढ़ते हैं। सुन लीजिए, आप लोगों के पास समय नहीं होता बाइबल पढ़ने के लिए, लेकिन जो हमारे विरोधी है वो बाइबल पढ़ते हैं ये साबित करने के लिए कि बाइबल गलत है। उनको भी बाइबल की बातें समझ नहीं आती। और एक ग्रुप, एक जाति रह गई है, वो है विश्वासी, उनके पास समय नहीं होता बाइबल पढ़ने के लिए। हमारे बारे में नहीं कर रहा, आप लोगों के पास समय है इसलिए तो आप मुस्कुरा रहे हैं कि हम पढ़ते हैं, अच्छी बात है, प्रेज द लॉर्ड। तो हम उस जाति में या उस दल में आते हैं जो जिनके पास बाइबल पढ़ने के लिए समय है, इसलिए हम नाश नहीं होंगे क्योंकि बाइबल का अध्ययन करते हुए पवित्र आत्मा की सहायता से हम परमेश्वर को पहचानेंगे और जो बातें हमें समझ आती है उन बातों में हम चलना शुरू करेंगे और इस तरह हम नाश नहीं होंगे। इसमें आप प्रेज द लॉर्ड कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा जब हम ऐसा करना शुरू करेंगे तो ऐसा ही हमारे साथ होगा। तो परमेश्वर का वचन में परमेश्वर कहता है कि मेरे ज्ञान ना होने से लोग नाश हो रहे हैं। और इस खूबसूरत बाइबल जो आपके पास है, एक्सपेंसिव बाइबल्स जो आप रखते हैं, इसमें परमेश्वर की कुछ आज्ञाएं आपको मिलेंगी और जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं से टकराते हैं बाइबल पढ़ते पढ़ते, तो आपको क्या करना चाहिए? उस पर ध्यान करना चाहिए और उन आज्ञाओं को मानना चाहिए क्योंकि वो आपकी और मेरी भलाई के लिए है। और बाइबल पढ़ते पढ़ते आप बीच बीच में कुछ प्रतिज्ञाओं को देखेंगे और जब परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं से आप टकराते हैं तो क्या करना चाहिए? हिम्मत करना चाहिए, परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और उम्मीद रखनी चाहिए कि वो प्रतिज्ञाएं पूरी होगी, चाहे आप विश्वास ना भी करें। दो तरह की प्रतिज्ञाएं आपको बाइबल में मिलती है। कितने प्रकार की? से ज्यादा है क्या? वो तो अध्ययन करने के बाद पता चलेगा ना। दो प्रकार की प्रतिज्ञाएं अभी है। एक है, कुछ प्रतिज्ञाएं आप पर निर्भर है। कहने का मतलब परमेश्वर ने एक शर्त रखी है कि आप अपना हिस्सा जो है, जो आपको करना चाहिए वो पूरा करेंगे तो परमेश्वर अपना हिस्सा पूरा करेगा। जैसे कि निर्गमन के पुस्तक का अध्याय आप ढूंढ लेना, लिखा था परमेश्वर ने कहा था कि अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो कोई भी बीमारी तुम पर नहीं आएगी, परमेश्वर ने कहा। तो बीमारी ना आने की जो प्रतिज्ञा है वो किस पर निर्भर है? कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। अगर हम नहीं मानेंगे तो बीमारियां आ सकती है। लेकिन परमेश्वर की कुछ प्रतिज्ञाएं हैं जिसमें परमेश्वर ने नहीं लिखा है कि कंडीशन सप्लाई, वो समझ आता है ना, शर्तें नहीं समझ आती, कंडीशन सप्लाई समझ आता है। तो परमेश्वर ने नीचे छोटा सा स्टार डाल के नहीं लिखा कि कंडीशन सप्लाई, यानी वो वादा जो है, वो प्रतिज्ञाएं जो है, चाहे आप विश्वास करो ना करो पूरी होगी। जैसे प्रभु ने कहा है कि मैं एक दिन बादलों में प्रकट होऊंगा तुम्हें ले जाने के लिए, चाहे आप विश्वास नहीं भी करो वो प्रकट होगा और आपको लेके भी जाएगा वो। तो परमेश्वर के वचन में दो तरह की प्रतिज्ञाएं हैं, तीसरा है कि नहीं आपको अध्ययन करने से पता चलेगा, अभी फिलहाल इतना है। दो तरह की प्रतिज्ञाएं हैं। जब प्रतिज्ञाएं हम देखते हैं अगर उसमें शर्त लगी हुई है तो उन शर्तों का पूरा करने की कोशिश कीजिए, वो प्रतिज्ञा पूरी होगी। अगर जहां पे बिना शर्त की प्रतिज्ञा है वहां पे आपको उछलना कूदना चाहिए, क्योंकि वो तो पूरा होकर ही रहेगा क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है। और परमेश्वर के वचन में उनको चेतावनियां भी दी थी, वो क्या है, कुछ वार्निंग्स। वार्निंग्स जब आप देखते हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वार्निंग्स जो है वो पूरी होगी। तो परमेश्वर के वचन में इस तरह की बातें पाई जाती है, हम ध्यान से पढ़ेंगे और आनंद मनाएंगे क्योंकि जो कुछ परमेश्वर कहता है वो पूरा होगा। आज हम थोड़ा सा इतिहास की बातों को देखते हैं, हम बाइबल में बाइबल की बातों को पूरी होते हुए देखते हैं, लेकिन उससे ज्यादा मजा आएगा जब हम आप बाइबल के लिखवाने के बाद विश्व भर में जो बातें बाइबल की पूरी हुई है उसको देखने से ज्यादा मजा आता है ना। तो हम देखते हैं परमेश्वर ने, अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा, जवाब देंगे तो आगे दिखाऊंगा, नहीं तो नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। सवाल पूछूंगा, परमेश्वर ने अपने लोगों से, हमसे नहीं, हमसे पहले जो थे, परमेश्वर ने यीशु मसीह के आने से पहले एक जाति को चुना था जिनको यहूदी कहते हैं, इसराइल कहते हैं, इब्री कहते हैं, अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। उनसे परमेश्वर ने एक बात कही थी, कौन सी बात, बहुत सारी बातें कही ना, तो उनमें से एक बात थी कि परमेश्वर ने उनको कहा कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करते रहोगे तो तुम विश्व में पूरे दुनिया में सबसे श्रेष्ठ जाति होगी। और बाइबल का इतिहास और इस दुनिया के इतिहास में आप देखेंगे इसराइल जो है जब तक परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता रहा वो सबसे सर्वश्रेष्ठ जाति रही है और अभी भी ऐसा ही है। लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं से हटकर चलना शुरू किया तो वो उनके साथ क्या हुआ, वो किसी और देश के गुलाम बन गए। ये सिर्फ बाइबल में ही नहीं, आप देखेंगे बाइबल के लिखवाने के और खत्म होने के बाद भी आप देखेंगे एडी में भी जब यीशु मसीह आए थे इसराइल आजाद नहीं था, रोमियों के, रोम के गुलाम थे वो। तो मेरी प्रजा, परमेश्वर क्या कहता है कि परमेश्वर के लोग नाश क्यों हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है। तो हम क्या कोशिश करेंगे परमेश्वर को जानने की। इफिसियों की पत्री का पहला अध्याय जहां से हमने कुछ संदेश पहले अध्ययन किया था वहां पे आपको अभी जाने की जरूरत नहीं, उस पहला अध्याय में पौलुस भी एक प्रार्थना करता है। पहला अध्याय का 16वां पद से लेके 22वां पद तक पौलुस की प्रार्थना है चर्च के लिए। उस प्रार्थना में सबसे पहले वो क्या कहता है कि वो इस प्रकार कहता है कि इसलिए मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं करना छोड़ा, और मेरी प्रार्थनाओं में मैं क्या कहता हूं परमेश्वर से कि परमेश्वर तुम्हें बुद्धि और समझ का आत्मा दे, यानी तुम्हें आत्मिक बुद्धि और समझ दे ताकि तुम परमेश्वर को पहचानो। तो नए सिरे से जन्म पाना काफी नहीं है, बाइबल हाथ में होना काफी नहीं है, पवित्र आत्मा अंदर होना काफी नहीं है, यीशु मसीह को पहचानना जरूरी है। तो नया नियम में भी हमारे लिए क्या प्रार्थना पौलुस करता रहा कि हम परमेश्वर को पहचाने। अब हम चलते हैं पुराना नियम में, व्यवस्था विवरण 5वीं पुस्तक जो पुराना नियम में है उसका 28वां अध्याय में परमेश्वर ने यह कहा था कि अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते रहेंगे तो वो नहीं सिर्फ आशीष नहीं, आप उस पोर्शन को पढ़ेंगे पहला पद से लेके 14वां पद तक, आप कभी समय निकाल कर पढ़ के देखना 28वां अध्याय का, परमेश्वर ने कई प्रकार के आशीषें उसमें बताई है, उसमें से एक है कि तुम सबसे दुनिया के सबसे श्रेष्ठ जाति। लेकिन परमेश्वर ने उनको चेतावनियां भी दी थी, परमेश्वर ने कहा था कि अगर तुम मेरी आज्ञाओं पर नहीं चलोगे, यदि तुम दूसरी देवताओं को मानना शुरू करोगे तो सबसे पहले तुम्हारा पास जो आराधनालय है जहां पर परमेश्वर ने उनसे वायदा किया था कि मैं तुमसे मिलूंगा वो जगह तुमसे छीन ली जाएगी, वो उसकी तबाही होगी। और यहूदियों के लिए उनका आराधनालय द टेम्पल इन जेरूसलम बहुत ही महत्वपूर्ण जगह थी, क्योंकि वहां उस जगह के लिए, ध्यान रखना उस समय सबके पास पवित्र आत्मा नहीं था जैसे अभी है, तो उस समय उनके लिए वो जगह बहुत ही महत्वपूर्ण जगह थी क्योंकि वहां पर परमेश्वर ने विश्वासियों से कहा था कि मैं तुमसे मिला करूंगा और तुमसे बातें करूंगा। अगर वो जगह खत्म हो गई, वो जगह किसी और ने खत्म किया, उसकी तबाही होगी और लोग वहां नहीं जा सकते फिर से, तो बहुत बुरी बात होगी ना। परमेश्वर ने कहा था, ऐसा हुआ है क्या? निर्गमन के पुस्तक का 29वां अध्याय में आपको पढ़ने को मिलेगा, 43वें पद में, एक्सोडस चैप्टर 29:43, जहां परमेश्वर ने कहा था कि इस जगह पर मैं इसराइल के लोगों से मिलूंगा और मेरी महिमा जो है वहां पर वास करेगी। इतिहास इस बात का गवाह है कि बीसी 586 में, इन 586 BC, नबुकदनेस्सर नाम का एक राजा जो बाबुल देश का था, बेबीलोनियन किंग नबुकदनेस्सर की सेना ने उस आराधनालय को पूरी तरह से नाश किया, पूरी तरह से। उसके बाद बीसी 538 में साइरस नाम का एक राजा था और साइरस ने इस आराधनालय को फिर से बनवाने की आज्ञा दी और 516 में यह मंदिर फिर से खड़ा हुआ। यानी कितने साल लगा? 70 साल के बाद 86 में नबुकदनेस्सर ने इसको बिल्कुल नाश कर दिया। 516 में, आपको मालूम ना कि बीसी उल्टा हम गिनते हैं, ये मालूम है ना सबको? ओके, तो 586 में उसकी तबाही हुई, 516 में फिर से वो मंदिर खड़ा हुआ। उसके बाद अब हम चलते हैं एडी में, एडी 70 में, 70 AD, टाइटस नाम का रोमन एम्परर ने उसकी सेना ने इस मंदिर को फिर से खत्म किया। ये सब इतिहास में है। 586 में नबुकदनेस्सर ने उस मंदिर को खत्म करने की आज्ञा दी, वो खत्म की गई। 538 में साइरस की आज्ञा से फिर से इसका पुनर्निर्माण शुरू हुआ। 516 में ये पूरा हुआ, लेकिन टाइटस नाम का रोमन एम्परर या साम्राट की आज्ञा से ये मंदिर फिर से गिरा दी गई। 1.1 मिलियन पीपल डाइड, यानी मर गए यहूदी लोग, और बाकी जो बचे थे उनको कैदी बना के ले गया। और इसके बारे में पवित्र शास्त्र में कहीं लिखा है क्या? ये जो एडी 70 में जो हुआ टाइटस सम्राट के द्वारा, ये पवित्र शास्त्र में कहीं लिखा हुआ मिलता है आपको? मत्ती का सुसमाचार का 24वां अध्याय में यीशु मसीह ने कहा था, ये जो मंदिर तुम देख रहे हो ये इस जगह पर नहीं होगा, एक पत्थर पे पत्थर नहीं बचेगा। और यरूशलेम शहर के बारे में कहा था कि यहां पर आग लगेगी। ये सब कुछ परमेश्वर ने कहा था, आप आराम से पढ़ के देख सकते हैं। दूसरी बात, तो एक बात प्रभु ने कहा था कि अगर तुम मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करोगे तो तुम्हारा आराधनालय जो है वो खत्म किया जाएगा, और यानी मेरी उपस्थिति की जगह फिर तुम्हारे पास नहीं होगी। दूसरा, परमेश्वर ने कहा था कि ये जो तुम्हारा देश है, जो परमेश्वर ने तुम्हें दिया, जो मैंने तुम्हें दिया है, ये भी तुमसे छीन लिया जाएगा। यानी इसराइलियों को कहा था कि इसराइल देश जो है तुम्हारे पास नहीं रहेगा। नबुकदनेस्सर जब चढ़ाई किया, जब आक्रमण गया इसराइल पर, तो बहुत सारे इसराइली लोग मर गए, बाकी लोगों को वो कैदी बना के बाबिलोन देश ले गया, और फिर इसराइल पर और लोग रहने लगे। इसराइल में एक भी यहूदी नहीं रहा उस समय। उसके बाद एडी में 70 में ऐसा ही हुआ, जब टाइटस के समय रोम की सेना इसराइल पर चढ़ाई की, आक्रमण किया, तो इसराइलियों को यानी यहूदियों को कैदी बना के रोम ले गया और वहां पर और लोग रहने लगे। तीसरी चेतावनी, परमेश्वर ने कहा था कि तुम बिखर जाएंगे। ऐसा नहीं कि तुम इसराइल से निकल के एक दूसरे शहर में जाके सारे एक साथ रहोगे, तुम बिखर जाओगे दुनिया में, दुनिया के अलग अलग कोने पे। यहां तक कि उस समय यहूदी लोग हमारे देश तक पहुंचे। चर्च हिस्ट्री में आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया था कि कोलकाता में और केरल में यहूदियों का आराधनालय, केरल में तो अभी भी है, 2011 में हम गए थे, शुक्रवार का दिन था इसलिए हम अंदर नहीं जा सके। शुक्रवार में क्या होता है? शुक्रवार शाम को शबत का दिन शुरू होता है। आपको ये भी मालूम ना कि यहूदियों का दिन शाम को शुरू होता है सूरज ढलने पर, तो शुक्रवार को गए थे इसलिए वो बंद रखा था, विजिटर्स अलाउड नहीं थे। लेकिन हमने देखा एक आराधनालय है, 3-4 परिवार वहां पे रहते हैं और उनको वो हिब्रू बोलते हैं और मलयालम भी बोलते हैं। तो ये यहूदी लोग पूरे विश्व में बिखर गए थे, उनका देश उनके पास नहीं था। चौथी चेतावनी परमेश्वर की ओर से ये रही कि वे सताए जाएंगे। यहूदियों को परमेश्वर ने कहा था कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं पर नहीं चलोगे, तुम्हारा आराधनालय तुमसे छीन लिया जाएगा, वो खत्म किया जाएगा, तुम्हारा देश तुमसे छीन लिया जाएगा और कोई बसना शुरू करेगा और तुम दुनिया में बिखर जाओगे और लोग तुम्हें सताएंगे। हिटलर, आप जानते हैं हिटलर ने क्या किया, अगर आपको इतिहास मालूम है और वर्ल्ड वॉर के विषय में, विश्व युद्ध के बारे में मालूम है, तो कॉन्सेंट्रेशन कैंप, हॉलोकॉस्ट, ये सब आपको अच्छी तरह से मालूम है। ये सब क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर ने चेतावनी दी थी। तो इसमें से हमें क्या सीखने को मिलता है? परमेश्वर का वचन अटल है, उसमें जो चेतावनी परमेश्वर हमें देता है उस पर अगर हम ध्यान नहीं करेंगे तो हमारे साथ ऐसा हो सकता है, और ये आज भी लागू है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ यहूदियों के लिए था। अगर नया नियम में परमेश्वर आपको चेतावनी देता है, हमें ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि हम सिर्फ वर्तमान की बातों को जानते हैं, परमेश्वर भविष्य को जानता है। भविष्य में हमारे साथ क्या हो सकता है परमेश्वर जानता है, इसलिए हमें वो चेतावनी देता है। इसी तरह ये तो थोड़ी सी डरावने वाली बातें थी, है ना। अब अच्छी बातें बताता हूं। परमेश्वर हमसे वायदा भी करता है। परमेश्वर ने इसराइल से कहा था यर्मिया नबी की पुस्तक में 31वां अध्याय का 35वां पद में, जर्मिया चैप्टर 31 वर्स 35, परमेश्वर ने कहा था कि जब तक सूरज चांद सितारे ये सब कुछ है, जब तक समुद्र में लहरें हैं, इस पृथ्वी पर यहूदी लोग होंगे, यानी मैं तुम्हें पूरी तरह खत्म नहीं कर उन्हें दूंगा। परमेश्वर ने कहा था, आप चाहे तो पढ़ के देख सकते हैं। और इस तरह की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने किसी और देश के साथ या किसी और जाति के साथ नहीं की। परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा था, जब तक सूरज है, चांद है, सितारे हैं, जब तक समुद्र में लहरें हैं, तब तक परमेश्वर का, यानी परमेश्वर का बनाया हुआ नियम जब तक चल रहा है। सूरज अपने टाइम पे दिखाई देता है हमें, समुद्र में लहरें कभी खत्म नहीं होती। परमेश्वर के नियम के अनुसार सब कुछ जब तक होता रहेगा, इस पृथ्वी में यहूदी लोग होंगे, इसराइली लोग होंगे। अब चलते हैं यशायाह नबी की पुस्तक में। अब यिर्मयाह में है ना, यिर्मयाह से थोड़ा सा पीछे को आइए, यशायाह नबी की, बुक ऑफ यशायाह चैप्टर 66 वर्स 8, 66वां अध्याय का 8वां पद को देखें, यहाँ क्या लिखा है। इस तरह की बातें कभी आज से पहले आपने सुनी है, या इस तरह की बातें आज से पहले दिखने को मिली है कि एक जाति या एक देश एक दिन में पैदा हो जाए? ऐसा मुमकिन है? ऐसी बात किसी ने कभी सुनी? किसने कभी ऐसी बातें देखी? क्या देश एक ही दिन में उत्पन्न हो सकता है? क्या एक जाति क्षण मात्र में ही उत्पन्न हो सकती है? क्योंकि सियोन को प्रसव पीड़ा उठी थी कि उससे संतान उत्पन्न हो गए। यहोवा कहता है, क्या मैं उसे जन्माने के समय तक पहुंचाकर ना जन्माऊं? यानी एक दिन में परमेश्वर ने कहा था कि देश पैदा होगा। कौन सा देश? इसराइल। अब परमेश्वर ने चेतावनी दी थी कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करोगे, तुमसे तुम्हारा मंदिर जो है आराधनालय खत्म हो जाएगा, तुम्हारा देश तुमसे छीन लिया जाएगा, तुम बिखर जाओगे, तुम सताए जाओगे। लेकिन परमेश्वर ने यह भी प्रतिज्ञा की कि ऐसा भी होगा कि मैं तुम्हें एक दिन में इकट्ठा करके वापस लाऊंगा। ये जो यशायाह नबी के द्वारा जो भविष्यवाणी हुई है, इसका अर्थ है कि इसराइल के लोग यानी यहूदी लोग जब वापस आएंगे, उनको बहुत सालों तक यतन करने की जरूरत नहीं होगी। एक ही दिन में मैं सबको इकट्ठा करके अपने उस देश में लाऊंगा। और इतिहास पढ़िए, आपको पता चलेगा, मई 14 तारीख 1948 में, यानी हमारे देश आजाद होने से के एक साल बाद की बात, एक दिन में विश्व भर में से सारे यहूदी इसराइल में पहुंच गए, एक ही दिन में। तो परमेश्वर ने जो कहा वो पूरा हुआ। और आज भी विश्व में लोग इस बात को देखते हुए हैरान है कि ये कैसे हुआ एक दिन में। और परमेश्वर ने उनसे यशायाह नबी की पुस्तक में ही 11वां अध्याय में 12वां पद में ये वादा किया कि तुम दुनिया के किसी भी कोने में रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर तुम मेरी ओर फिरोगे तो मैं तुम्हें इकट्ठा करके वापस लाऊंगा, पृथ्वी के चारों कोनों से मैं तुम्हें लेके आऊंगा। और परमेश्वर ने ऐसा किया। एक और बात है कि जब ये लोग अलग अलग देशों से लौट कर आए, तो इनके जहाँ तक इनके विश्वास और भाषा की बात है, ये यहूदी थे, यहाँ तक रशिया से यहूदी लोग आए थे। और एक बात, परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण का 33वां अध्याय में 29वां पद में, ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 33 वर्स 29, इसराइल से अपने लोगों से एक वायदा किया, जो कि आपके लिए भी है, इसलिए आप पढ़ सकते हैं। ये सिर्फ इसराइलियों के लिए नहीं, हमारे लिए भी है। व्यवस्था विवरण का 33वां अध्याय, 33 चैप्टर 29 वर्स 29, हे इसराइल तू क्या ही धन्य है, हे यहोवा के उद्धार पाई हुई प्रजा तेरे तुल्य कौन है? वे तो तेरी सहायता के लिए ढाल और तेरे प्रताप के लिए तलवार है। यानी तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ है और तेरी सहायता के लिए ढाल बनकर और तेरे प्रताप के लिए तलवार है, तेरे शत्रु तुझे सराहेंगे, तेरी तारीफ करेंगे, तुम्हारे सामने झुकेंगे और तू उनके ऊंचे स्थानों पर ऊंचे स्थानों को रौंद देंगे। ये परमेश्वर ने वादा किया था। और इसराइल के इतिहास में आप देखेंगे वो सताए गए, उनके उनका देश उनसे छीन लिया गया था, लेकिन परमेश्वर उनको पूरी तरह से नाश होने नहीं दिया। और भजन संहिता में भी एक जगह पे लिखा है 121वां भजन में, जो कि आप सबको पता है कि इसराइल का परमेश्वर ना सोता है ना ऊँगता है। इसराइल की रखवाले करने वाला ना तो कभी सोता है ना ऊँगता है। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है, ना तो दिन के धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। ये सब परमेश्वर की ओर से वादा है और परमेश्वर ने उनको ऐसे बचाए रखा, और ये हमारे लिए भी है। यशायाह का 35वां अध्याय का पहला पद में, जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे, मरुभूमि मगन होकर केसर के समान फूलेगी। ये परमेश्वर ने वादा किया था इसराइल के लिए। आपको मालूम है ना कि इसराइल जो है अरब देशों के बीच में है और एक रेगिस्तान के समान है। वहां पे कुछ आप खेती नहीं कर सकते, कुछ उगा नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा था इसराइल के लिए कि मरुभूमि और यानी जंगल और निर्जल देश क्या होगा, प्रफुल्लित होंगे। तो आज के इतिहास में है, आप इसराइल के बारे में अध्ययन कीजिए, इसराइल में किसी भी चीज की कमी नहीं है। वहां पे खेती भी है, फूल भी है, और विश्व में सबसे ज्यादा वैक्स फ्लावर एक्सपोर्ट इसराइल से होता है, उसके बाद रोसेस गुलाब, लेकिन गुलाब में शायद केनिया सबसे आगे है गुलाब एक्सपोर्ट करने में। इसराइल के इसराइल दूसरे नंबर पर है। एक मरुभूमि, एक रेगिस्तान, लेकिन परमेश्वर ने क्या वादा किया था, यहाँ पे केसर के फूल होंगे और वो है वैक्स फ्लावर। तो परमेश्वर जो वायदा करता है उसे पूरा भी करता है। उसके बाद परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इसराइलियों से कहा था, किससे कहा था, अपने लोगों से। हमने शुरुआत में क्या देखा था, परमेश्वर के अपने लोग क्यों नाश हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास परमेश्वर की पहचान नहीं है। ज्ञान का मतलब साइंस और गणित का ज्ञान नहीं है, ज्ञान का मतलब है कि परमेश्वर की पहचान। परमेश्वर को ना पहचानने के कारण लोग नाश हुए जा रहे हैं। आज हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, आज हम हमारे बारे में बात कर रहे हैं। ये जब बात लिखी गई थी, परमेश्वर ने किसके लिए सबसे पहले किसके लिए बात लिखवाई थी, अपनी प्रजा इसराइल के लिए। आज जब हम बात कर रहे हैं तो हमें समझना चाहिए कि हमारे विषय में बात हो रही है। व्यवस्था वरण का 29वां अध्याय मैंने आपको बताया, व्यवस्था वरण का 29वां अध्याय का 22वां पद से हम पढ़ते हैं, वहां पर एक खूबसूरत बात है। यहां पर मूसा ने इसराइल के इसराइलियों से कहा था कि जब तुम परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानोगे तो तुम अपने देश से निकाले जाओगे, तुम्हारा आराधनालय खत्म किया जाएगा और तुम दूसरे देश में जाके बसना शुरू करोगे और तुम्हारा देश जो है बिल्कुल खाली रहेगा, वहां पे कोई नहीं रहेगा। ऐसा समय में परदेशी लोग तुम्हारे देश में आएंगे, ए फॉरेनर विल कम टू योर लैंड। 22 में लिखा है, और आने वाली पीढ़ियों में तुम्हारे वंश के लोग जो तुम्हारे बाद उत्पन्न होंगे और परदेशी मनुष्य भी जो दूर देश से आएंगे, वे उस देश की विपत्तियां और उसमें यहोवा के फैलाए हुए रोग देखकर और ये भी देखकर कि इसकी सब भूमि गंधक और लोन से भर गई है और यहां तक जल गई है कि इसमें ना कुछ बोया जाता और ना कुछ जम सकता है और ना घास उगती है, वरन सोदोम और अमोरा और अदमा और सबोरियम के समान हो गया है, जिन्हें यहोवा ने अपने कोप के जलजलाहट से उलट दिया था। और सब जातियों के लोग पूछेंगे, यहोवा ने इस देश से ऐसा क्यों किया और इस बड़े कोप को भड़कने का क्या कारण है। तब लोग ये उत्तर देंगे, उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने जो वाजा उनके साथ मिस्र देश से निकालने के समय बांधी थी उसको उन्होंने तोड़ा है। तो परमेश्वर ने कहा था कि परदेशी लोग, विदेशी लोग आएंगे इस देश में और देखेंगे, तबाही को देखेंगे, ये देश कैसे उजाड़ा गया है, इसमें अब कोई रह नहीं सकता, इस बात को देखेंगे। और आपको मालूम है 1867 में, 1867 बहुत सारे फॉरनर्स आए थे, लेकिन उसमें एक फॉरनर है जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है, उनका नाम है मार्क ट्वेन। मार्क ट्वेन के विषय में आपने सुना होगा, फेमस बुक्स है इनका टॉम सॉयर और एडवेंचर्स ऑफ हकलबरी फिन। मार्क ट्वेन 1867 में, 1867 में इसराइल में आया, 4 दिन वहां पर रुके रहे, चौथा दिन जो है फ्राइडे था, फ्राइडे की खासियत क्या है, शब्द शुरू होता है okay? वो चार दिन वहां पर रहे, उसके बाद वापस अपने देश अमेरिका में आया और उसने एक किताब लिखी, द इनसेंस एब्रॉड, उस नाम से किताब लिखी और शायद वो 1868 पब्लिश हुई है वो बुक। और उसमें मार्क ट्वेन ने इसराइलियों का मजाक उड़ाया और उसने ये तक कहा कि इस देश के लिए क्यों लोग लड़ रहे हैं जहां पे कोई रह नहीं सकता, जहां पे बिल्कुल जो बिल्कुल मरुभूमि है, जहां पे कुछ उगाया नहीं जा सकता, इस देश के लिए क्यों लोग लड़ रहे हैं। मूसा ने कहा था ना कि ऐसा होगा, विदेश की तुम्हारे अपने लोग भी देखेंगे, परदेशी भी आके देखेंगे। और ये पूरा हुआ 1867 में। लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया होगा लेकिन ऐसा हुआ। बल्कि उसके बाद क्या हुआ या उस दिन की खासियत क्या थी, उस दिन यहूदियों में एक प्रथा है जो कि यीशु मसीह के समय से शुरू हुआ कि वो पुराने नियम जो उनके पास है, उत्पत्ति से लेके कहां तक है मलाखी तक जो पुस्तकें हैं उनके पास, उनमें से एक पोर्शन वो हर शब्द के दिन पढ़ते हैं। पूरे विश्व में, पूरे विश्व में यहूदी लोग एक ही बात को पढ़ते हैं एक शब्द के दिन। उस दिन, उस शुक्रवार के दिन शाम को, क्योंकि शब्द शुरू होता है और विश्वभर में सारे यहूदी लोग एक ही बात को पढ़ते हैं। पढ़ने का मतलब हुआ कि या तो वो उस बात का ऐलान कर रहे हैं या फिर परमेश्वर से विनती कर रहे हैं उन बातों के द्वारा जो पुराने नियम में, ये अपने थोरा और अपने नबियों की पुस्तकों में से जरूर पढ़ते हैं, एक पोर्शन जरूर पढ़ते हैं उस दिन। और उसमें या तो परमेश्वर से विनती होगी या फिर कुछ घोषणा होगी। और उस दिन, उस 1867 में शुक्रवार के दिन विश्वभर में यहूदी लोग यही पोर्शन को पढ़ रहे थे जो हमने अभी व्यवस्था विवरण का 29वां अध्याय का 22 से लेकर 28 तक का पोर्शन वो पढ़ रहे थे। उसी दिन ये फॉरनर आया। ये मैंने इतिहास से लिया है, ये बाइबल में नहीं लिखा है। और इस प्रथा को अगर आप गूगल में ढूंढ सकते हैं, इस प्रथा को पारशा बोलते हैं, PARSHA, पारशा। एक बाइबल के एक पोर्शन को हर शब्द के दिन पढ़ना, और पूरे विश्व में एक ही पोर्शन पढ़ा जाता है। बाइबल की बातों को सबके सामने पढ़ना यहूदियों में है, पहली शताब्दी में शुरू हुई है, यीशु मसीह के समय में भी था। इसलिए पौलुस तिमोथी की पत्री में पहले तिमोथियस की चौथा अध्याय में आदेश देता ना कि मेरे आने तक पढ़ने में और उपदेश देने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहना। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि वो अध्ययन करे और लोगों को पढ़ाए, लोगों को शिक्षा दे। पढ़ने का मतलब है कि सबके सामने पढ़ के सुनाना। क्यों, कारण क्या है, कारण क्या है ताकि सब जान पाए। लेकिन सबके सामने बाइबल को पढ़ के सुनाने का कारण क्या हो सकता है, नहीं सबके पास बाइबल नहीं थी, भूल गए, सबके पास बाइबल की कॉपी नहीं। आज तो सबके पास दो तीन बाइबल से, एक फोन में भी है, दो लैंग्वेज में लेके घूमते हैं। उस समय बाइबल सबके पास नहीं थी, चर्च में एक ही कॉपी होती थी, वो भी ऐसी प्रिंटेड फॉर्म में नहीं होती थी। तो इसलिए पढ़ के सुनाना। इसलिए प्रकाशित वाक्य में भी पहले अध्याय में लिखा ना कि जो इसको पढ़ेगा आशीषित है, जो इसको पढ़ेगा और सुनेगा। और हम सोचते हैं कि मैं पढ़ूंगा तो मैं बहुत आशीष दूंगा, नहीं, जो पढ़ के सबको सुनाएगा ताकि सब सुन सके। तो ये जो चर्चस में बाइबल पढ़ने की जो प्रथा है पढ़ के सुनाने का, वो हमें यहूदियों से मिली है। आप हैरान हो रहा है, यहूदियों से मिले। पहले मसीह विश्वासी कौन थे, जिन्होंने सबसे पहले जो मसीह बने वो यहूदी थे। तो उनके उन्होंने जो कुछ भी किया है अपने पुरानी यहूदी परंपराओं के अनुसार किया है। तो कहने का मतलब चर्च में भी ये प्रथा है कि हम बाइबल पढ़ के सुनाते हैं, जैसे अभी आज हुआ था। इसलिए नहीं पढ़ के सुनाया कि आप सबके पास कॉपी नहीं है, इसलिए पढ़ के सुनाया क्योंकि आप बाइबल खोल के नहीं बैठते आराधना के समय कि परमेश्वर कुछ बात करे तो हम देख सके। इसलिए पढ़ के सुनाया क्योंकि परमेश्वर चाह रहा था कि हम उस बात को सुने जिसकी हम आराधना कर रहे हैं, वो कितना महान है। ऐसी कुछ बात हुई थी ना, जब भूल गए हम कि क्या सुना था, कहाँ से पढ़ा था, क्या पढ़ा था। परमेश्वर विराजमान है और उसके प्रताप के विषय में कुछ बातें हुई थी ना आराधना के बीच में। तो उस दिन यहूदी लोग यही पोर्शन पढ़ के इसकी घोषणा कर रहे थे। और क्या ये एक अचंभे की बात नहीं है कि उस दिन वो एक परदेशी उस देश में आया जैसे लिखा गया था, और उसी दिन वहां के याचकों ने, यहूदी याचकों ने उसी बात को पढ़ा और बोला, डिक्लेयर किया कि ऐसा होगा। ये अपने आप कैसे हो सकता है। और ये जो मार्क ट्वेन है, ये मार्क ट्वेन का असली नाम आपको पता है, सैमुएल मतलब गॉड, परमेश्वर सुनता है, और क्लेमेंस का मतलब है कि परमेश्वर ने अपनी करुणा दिखाई है। तो यहूदी लोग उस समय परमेश्वर से क्या प्रार्थना करते रहे,
क्योंकि ध्यान रखना ये लोग उस समय अपने देश में नहीं है. मेजोरिटी यहूदी उस समय कहाँ है, इसराइल के, इसराइल से बाहर है. तो उनकी प्रार्थना क्या रही होगी कि परमेश्वर हमें अपना देश लौटा दे, परमेश्वर तो अंबर अपनी करुणा दिखाओ. लेकिन उस देश को लौटाने से पहले इस बात का पूरा होना जरूरी था, क्योंकि अभी हमने व्यवस्था विवरण का 29वां पद में पढ़ा, 22 से लेके 28 तक. उसका 29वां पद में क्या लिखा है सबको मालूम होना चाहिए. गुप्त बातें परमेश्वर के वश में है, सीक्रेट थिंग्स बिलोंग टू गॉड, सबको मालूम है. लेकिन उससे पहले ये बातें लिखी थी, उस पर कभी ध्यान नहीं गया होगा, आज गया. 22 से लेकर 28 तक भविष्यवाणी हुई मूसा के द्वारा कि ऐसे ऐसा होगा. और फिर मूसा ने ये भी कहा कि गुप्त बातें परमेश्वर के वश में है, लेकिन जो हम पर प्रकट हुई है वो हमारे लिए है, ताकि हम इस व्यवस्था का पालन कर सके. तो परमेश्वर के पास बहुत सारी गुप्त बातें हैं, वो परमेश्वर के वश में है, वो बाद में समझ आता है जब परमेश्वर अपना काम पूरा कर चुका होता है. लेकिन जो प्रकट हुआ है वो हमारे लिए है. इसके बाद अब ध्यान रखना, मूसा जब बातें कर रहे थे बीच बीच में अध्याय नहीं डालता था, मूसा अपनी बातें करता गया और लिखने वाला लिखता गया. 30वां अध्याय में मूसा ने दूसरा पद से लेकर 10वां अध्याय, इस 30वां अध्याय में आपको पढ़ने को मिलेगा कि परमेश्वर ने वादा किया था कि मैं तुम्हें फिर जहां पर भी तुम हो वहां से तुम्हें लेके आऊंगा और फिर से तुम इसराइल में बसना शुरू करोगे. लेकिन उस काम को करने से पहले इस काम का होना जरूरी था कि एक परदेशी आएगा और उस देश के बारे में वो अपनी टिप्पणी देगा. और आमोस की पुस्तक में याद है आपको, आमोस के 9वां अध्याय में 11 और 12 पद में परमेश्वर ने कहा था कि मैं एक दिन दाऊद की उस झोपड़ी को फिर से खड़ा करूंगा. दाऊद की झोपड़ी का मतलब क्या है, आराधनालय. मैं उस आराधनालय को फिर से खड़ा करूंगा. और लेकिन आराधनालय को फिर से खड़ा करने से पहले एक काम का होना जरूरी है ना, आराधना करने वाले लोग उस जगह पर हो. आराधनालय को खड़ा करने से पहले आराधना करने वाले लोग उस देश में आए. तो 1948 मई 14 तारीख को विश्व भर में यहूदी लोग यही आयात को पढ़ रहे थे. कौन से आयात, जो आमोस की पुस्तक में है 9वां अध्याय में 11 और 12. इन बातों से हमें क्या सीखने को मिलता है, क्योंकि 1948 में क्या हुआ है बाइबल में नहीं लिखा है, 1867 में क्या हुआ है बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन विश्व के इतिहास में है. परमेश्वर ने जो कहा वो पूरा हुआ. और इससे, इसमें से हमें क्या सीखने को मिलता है, हमें परमेश्वर के इस वचन पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ उसने कहा है वो पूरा होगा, वो पूरा होगा. अब एक और बात आपको बताना चाहता हूँ. लेवीय व्यवस्था में चलते हैं 25वां अध्याय, और इसमें एक बार आपको चलना चाहिए, क्योंकि ये जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो भी परमेश्वर की गुप्त बातों में से एक है. जो बातें प्रकट की गई है वो हमारे लिए हैं, जो बात परमेश्वर प्रकट नहीं करता वो परमेश्वर के वश में तब तक है जब तक वो उसे प्रकट नहीं करता. वहाँ पर एक जुबली के विषय में चर्चा है. 13वें पद में लिखा है कि इस जुबली के वर्ष में तुम अपनी अपनी निज भूमि को लौटने पाओगे. ओके, इस निज भूमि इस जुबली के विषय में हम 8वें पद से लेके पढ़ सकते हैं, और उसमें विस्तार रूप से लिखा गया है कि ये जुबली जो है, जुबली का वर्ष जो है 7 साल के, यानी 7 बार 7 यानी कितना हो गया, 7 बार 7 कितना हो गया, 49 वर्ष, यानी 49 ईयर्स. 49 वर्ष के बाद कौन सा वर्ष शुरू होता है, 50वां. तो 49वां वर्ष से लेके 50वां वर्ष तक जो है वो जुबली का साल होगा. उस साल में परमेश्वर ने मुख्य रूप से 3 बातें कही कि जो आपका जायदाद है, आपकी जो प्रॉपर्टी है, वो आपको वापस मिलेगी. अगर आपने बेची है तो उस साल आपको वापस मिलेगा. लोग अगर गरीबी के कारण अपने आप को गुलाम बना के किसी के गुलाम बन गए हो तो उस दिन आपकी रिहाई होगी. उस साल कोई खेतीबाड़ी नहीं करेंगे, उनके पास खाने की वस्तु होगी, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी. उस साल जमीन को, खेत को खाली छोड़ देंगे, कोई खेती नहीं करेगा. ये 3 बातें मुख्य रूप से परमेश्वर ने कही थी. तो जुबली साल की खासियत क्या है, आपको अपनी जमीन जो है, या अपना शहर जो है, या फिर अपना देश जो है वापस मिलेगा. तो ये भी पूरा होगा ना. अब इसराइलियों को आदेश था कि वो इस बात का ध्यान रखें. लोग अगर आप पुराने नियम में जाते हैं तो आपको दिखाई देता ना कि उस प्रॉमिस लैंड जिसके लिए परमेश्वर ने उस कनान देश में पहुंचाने के बाद परमेश्वर ने सब गोत्रों को अपनी अपनी ज़मीन दी, याद है आपको. तो सबके अपने अपने पोर्शंस हैं, लेकिन लोग कई कई बार पैसे की कमी के कारण जमीन बेच देते हैं। परमेश्वर ने कहा ध्यान रखना, जुबली के साल में तुम्हें वो वापस मिलेगा, यानी जो परमेश्वर ने तुम्हें दिया है वो तुम्हारे पास हमेशा होगा, चाहे 50 साल तक नहीं रहे तो भी 50वां साल में या 49वां साल में तुम्हारे पास लौट आएगा। इसलिए बेचते समय भी जब तुम कीमत लगाते हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए कीमत लगाना कि 50वां साल से कितने पीछे हो तुम। अगर 50वां साल नजदीक है तो कीमत कम होगी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल में है, पढ़ लेना। ऐसा क्यों परमेश्वर कहता है, ऐसा क्यों कहता है परमेश्वर? परमेश्वर न्यायी है और धर्मी है। इसमें आप क्या देखते हैं, हम पुराने नियम के व्यवस्था को जब पढ़ते हैं ना, हमें क्या दिखाई देता है? जब हम 10 आज्ञाओं को पढ़ते हैं तो उसमें क्या दिखाई देता है कि हमारा परमेश्वर कितना महान है और उसकी एक स्टैंडर्ड है और वो चाहता है कि हम उस स्टैंडर्ड को बनाए रखें। हमें दिखाई देता है कि परमेश्वर कितना धर्मी है, उसके सारे कामों में उसकी धार्मिकता पाई जाती है और वो चाहता है कि जो उसके अपने लोग हैं उस धार्मिकता को बनाए रखें। ये 10 आज्ञाएं और बाकी जितनी भी आज्ञाएं बाइबल में है, ये आपको परेशान करने के लिए नहीं है, आपको सताने के लिए नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि जो अपने आप को परमेश्वर के कहते हैं ना कि मैं परमेश्वर की संतान हूं, तो परमेश्वर के स्टैंडर्ड को बनाए रखो। तो स्टैंडर्ड वो देता है, बताता है अपने वचन में। परमेश्वर ने कभी भी इसराइल को ये अनुमति नहीं दी कि वो दूसरों के साथ अन्याय करें, अपने भाई बहनों के साथ ही नहीं, अन्य जातियों तक भी। परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे बीच में जो परदेशी रहते हैं उनके साथ गलत बर्ताव नहीं करना। लिखा है बाइबल में, लिखा होगा क्योंकि मैं कह रहा हूँ, पढ़ के देख लीजिए, है बाइबल में है। तो परमेश्वर हमें ये अनुमति नहीं देता कि हम नॉन क्रिश्चियंस के साथ गलत व्यवहार करें, अगर करेंगे तो उल्टा हमें भुगतना होगा। मैं सीरियसली बता रहा हूँ आपको। परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा कि तुम इस जुबली साल का ध्यान रखना, ये सब तुम्हें करना होगा, लेकिन परमेश्वर स्वयं भी अपनी जुबली में सब कुछ करता रहता है। यानी ऐसा हम कह सकते हैं कि परमेश्वर के पास अपना एक कैलेंडर है, जैसे हमारे पास है ना अपने अपने कैलेंडर, है ना, हमारे सेलफोन में भी है, लैपटॉप में भी है, फिर हम दूसरा छपवा के भी रखते हैं ताकि तारीख हम भूल ना जाए। नहीं, इसमें एक और फायदा है, जिसका वो जिसने कैलेंडर दिया है उसको भी आप याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मैं करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। परमेश्वर के पास एक कैलेंडर है और हर 50 साल में परमेश्वर भी कुछ करता रहता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलता है। 1948 में यहूदी लोग वापस आए, इसराइल के लोग वापस इसराइल में बसना शुरू किए। 1967 में क्या हुआ, 1967 अरब के 20 देशों ने मिलकर इसराइल पर आक्रमण किया। 1948 में इसराइल के लोग वापस आए, 67 कितने साल का फासला है, जितने भी है, 19 साल 20 साल आप लगाते रहिए हिसाब, ठीक है। तो उस समय ये युद्ध जो है बहुत ही मशहूर है, क्योंकि इसको 6 दिन का युद्ध कहते हैं, द वॉर ऑफ 6 डेज। 6 दिन लड़ाई होती रही, 6 दिन तक 20 अरब देश मिलकर इसराइल पर चढ़ाई की, आक्रमण किया। और छठा दिन, और आपको एक मजेदारी की बात बताऊं, जिस दिन इन्होंने आक्रमण शुरू किया ना, वो भी एक फ्राइडे के शाम, फ्राइडे क्या है, शुक्रवार को क्या है, शब्द, यानी जब वो शब्द के दिन जब कुछ भी काम नहीं करते, उस दिन इन्होंने चढ़ाई। और वो बात अरब देशों को मालूम था कि आज इनका शब्द का दिन है, ये हथियार नहीं उठाएंगे, कुछ भी काम, मतलब कुछ भी काम नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने हथियार जरूर उठाया। और ये उन अरब देशों के मुकाबले इसराइल जो है एक छोटा सा देश है, जिनके पास कोई खास सेना भी नहीं थी, फिर भी छठा दिन, अगले शब्द के दिन तक इन्होंने उन 20 देशों को हराया। और इतिहास कहता है कि अगले शब्द के दिन इसराइली सेना यरूशलेम नगर में थी। खासियत क्या है, अगर आप हिस्ट्री देखेंगे, 1948 तक पूरा इसराइल जो है ग्रेट ब्रिटेन के पास, 1948 यानी 1948 मई 14 तारीख इसराइल को, मतलब ब्रिटेन ने इसराइल को हैंड ओवर किया, लेकिन इस ब्रिटेन ने एक धोखा दिया इसराइल के साथ, यरूशलेम शहर उनको नहीं दिया। इसराइल के लिए सबसे प्यारा शहर कौन सा है, यरूशलेम, जहां पर उनका आराधनालय था, वो नहीं दिया, वो जॉर्डन को दिया। लेकिन इस युद्ध में मैंने आपको अभी क्या बताया, छठवां दिन इसराइली सेना कहां थी, क्या मतलब, यरूशलेम उनके वश में वापस आया। परमेश्वर का कैलेंडर चल रहा है। 1867 में क्या हुआ था, मार्क ट्वेन यरूशलेम में खड़ा होकर यरूशलेम के बारे में टिप्पणी दी। 100 साल बाद, कितनी जुबली, 2 जुबली के बाद, परमेश्वर के कैलेंडर के अनुसार यरूशलेम शहर इसराइल के पास वापस आया। 1917 में क्या हुआ होगा, वो भी एक जुबली का साल है ना, 50 साल पहले मार्क ट्वेन आया था 1867 में, इसराइल का युद्ध 20 अरब देशों के साथ 1967 में, उसके बीच में और एक जुबली साल है ना, 1917 में क्या हुआ होगा, 1917 तक, 1917 तक इसराइल की राजधानी जो जरूसलेम है ये तुर्कियों के पास था। उस दिन, उस साल में उन्होंने ये ब्रिटेन को हैंड ओवर किया। तो पहले तुर्कियों ने ब्रिटेन को दिया और फिर ब्रिटेन ने यॉर्डन को दिया और अगले जुबली में वो इसराइल के पास वापस आया। लेकिन अब ये सब होता रहा, लेकिन यरूशलेम इसराइल के वश में होने के बावजूद और वो उनकी राजधानी होने के बावजूद अरब देशों ने और मुख्य रूप से यूनाइटेड नेशंस ने इस बात को मानने से इनकार किया कि ये इनकी अपनी जगह है। और यूनाइटेड नेशंस हमेशा दबाव रखा उन पर कि तुम्हें इसको अपनी राजधानी नहीं बनाना चाहिए। और इसलिए शुरुआत में शायद 13 एम्बेसीज उस शहर में रहा है कुछ आसपास के देशों का, लेकिन उसके बाद सबने वापस लिया, सब टेल अबीब में चले गए। यानी जेरूसलम को विश्व में, यहाँ तक हिंदुस्तान की तो बात पे, और हिंदुस्तान ने कभी इसराइल के साथ नहीं दिया था, किसी दिन और किसी दिन अध्ययन करेंगे अब क्या हो रहा है। तो कुछ कुछ जो हमें नहीं समझ आ रहा है इस देश के साथ हो रहा है। हमारे पास जो लोग हैं स्कॉलर्स हैं, अध्ययन करेंगे फिर देखेंगे कि इसका अर्थ क्या होगा। प्रोफेसर होंगे वो प्रार्थना करेंगे, समझ में आएगा। अभी जो परमेश्वर कर रहा है हमें नहीं समझ आ रहा होगा। 2017 में क्या हुआ, यरूशलेम तो कैपिटल रहा है शुरू से, लेकिन 2017 में एक खास बात हुई। यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक घोषणा की, हम अपनी एम्बेसी जो है यरूशलेम में शिफ्ट कर रहे हैं। इस तरह यूएसए ने सबसे पहली बार इस बात को माना कि यरूशलेम जो है इसराइल का राजधानी है। की खासियत क्या है, वो एक जुबली ईयर है, राइट? आपने जल्दी से पकड़ लिया, 50 साल के बाद, राइट? लेकिन इसमें एक और खास बात है, ट्रंप का मतलब क्या है, ट्रंप नाम का मतलब क्या है। ये जो जुबली ईयर है, मैंने आपको बताना भूल गया, ये जो जुबली ईयर हिंदी में लिखा है या इंग्लिश में भी जुबली लिखता है, इब्रानी भाषा में जुबली का मतलब है ट्रम्पेट या नरसिंहा। और ये जुबली ईयर शुरू जुबली ईयर में परमेश्वर इनको कहा था कि ये सातवां महीने का सातवां दिन तुरही फूकी जाएगी। सातवां महीने की खासियत क्या है, बाइबल में है, पढ़ लेना, सातवां महीने का सातवां दिन तुरही फूकी जाती है। उस दिन इसलिए इस साल को जुबली कहते हैं, क्योंकि जुबली का अर्थ है तुरही या ट्रम्पेट। और ट्रंप का मतलब क्या है, जो तुरही बचाता है। ट्रंप का मतलब है जो ट्रम्पेट को बचाता है। तो उस दिन ट्रंप ने क्या किया, उस दिन घोषणा की, किस बात की घोषणा की, कि जेरूसलेम जो है इसराइल का राजधानी है। तो आपको कुछ कनेक्शन दिखता है कि परमेश्वर की बातें कैसे पूरी हो रही है। परमेश्वर की बातें जो गुप्त है वो पूरी होती जा रही है। यानी परमेश्वर जो है वो परमेश्वर है, और विश्व भर में जो कुछ भी हो रहा है वो उसकी नजर में है, उसको दिखाई देता है। और हम सोच रहे हैं कि ये अचानक क्या हुआ, लेकिन परमेश्वर बैठ के नहीं सोचते कि ये अचानक क्या हुआ। परमेश्वर नहीं सोचता ऐसा बैठ के, क्योंकि उससे पहले से ही मालूम है कि ऐसा सब होने वाला है। और कुछ बातें परमेश्वर खुद ऐसा होने दे रहा है। हमने पढ़ा था ना कुछ संडे से पहले इब्रानियों की पत्री का पहले अध्याय का तीसरा पद में, कि वो अपने वचन के सामर्थ्य से इस पूरी पृथ्वी को यानी पूरे विश्व को संभालता है। इब्रूस चैप्टर 1:3 पढ़ लीजिएगा। तो परमेश्वर के कैलेंडर के अनुसार बहुत कुछ इस विश्व भर में हो रहा है। एक और खास बात है, जुबली में सब अपने अपने देश में लौट जाता है ना, जहाँ जो उनका अपना है वहां पे लौटना चाहिए। तो जैसे जैसे यीशु का हमें ले जाने का समय नजदीक आ रहा है, हम मसीह लोग भी अपने उस जगह को लौटेंगे जहाँ से हमने शुरू किया था। हमारी शुरुआत कहाँ से, मसीहत की शुरुआत के दिनों की बातें कहाँ पे लिखी है, कौन सी पुस्तक में, प्रेरितों के कामों में। इसका मतलब हम प्रेरितों के कामों में लौटेंगे। जो कुछ हम प्रेरितों के कामों में देखते हैं वो फिर से शुरू होंगे, क्योंकि हमारे लौटने का टाइम नजदीक है। अभी जिस तरह आप या जिस रीति से मसीह लोग चल रहे हैं, आने वाले दिनों में नहीं चलेंगे। आप एक्ट्स को, प्रेरितों के कामों को फिर से देखेंगे, और दुनिया के लोग जो विश्वास नहीं करते वो क्या करेंगे, इसराइली लोग लौटेंगे, इसराइल पे पूरी तरह सेटल होंगे, यीशु को प्रभु मानेंगे। मसीह लोग अपने दुनियावी चीजों को छोड़कर उस समय के प्रेरितों के समान जीना शुरू करेंगे। उस समय का काम फिर से शुरू होंगे, सुपरनैचुरल चीजें हम फिर से देखना शुरू करेंगे, चंगाइयां और चमत्कार एक रोज की बात होगी चर्च में। लेकिन जो लोग विश्वास नहीं करते, जो मसीही नहीं है, वो क्या करेंगे, वो भी अपने पुराने चीजों में लौट जाएंगे ना। अगर हम अपने शुरुआत के समय में जा रहे हैं तो वो भी अपने शुरुआत के समय में जाएंगे ना। जो परमेश्वर को नहीं मानते, उनकी शुरुआत की बातें या उनकी शुरुआत की जीवन आपको कहां पे देखने को मिलती है, जो लोग परमेश्वर को नहीं मानते थे, जो परमेश्वर के विरोध में जाते थे, उनके बारे में कौन सी पुस्तक में? बाइबल में, उत्पत्ति की पुस्तक में, उत्पत्ति की पुस्तक में आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिलता है। 6 अध्याय के बाद इब्राहिम को बुलाए जाने तक का जो समय काल है, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि दुनिया के लोग जो परमेश्वर से दूर थे, जो परमेश्वर को नहीं मानते थे, वो किस तरह की जिंदगी जीते थे। सोदोम और गोमोरा सब उसमें है। आज उसकी शुरुआत हो गई ना, आज विश्वभर में क्या हो रहा है, तो इसका मतलब हमारा लौटने का समय नजदीक है, काफी नजदीक है। परमेश्वर के कैलेंडर के अनुसार जिस दिन यीशु मसीह आसमान में प्रकट होगा, वो एक जुबली का साल होगा, है ना, हमारा लौटने का, पूरी तरह लौटने का समय। तो ये बातें हम क्यों देख रहे हैं? ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि परमेश्वर जो कुछ बाइबल में कहता है वो पूरा हो, और हमारा देश भी परमेश्वर के मैप में है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसराइल ही है। उस जमाने में जब हम पुराने नियम के पुस्तकों को पढ़ते हैं, उस जमाने में सिर्फ इसराइल अकेला परमेश्वर के लोग नहीं थे। परमेश्वर ने वादा किया था ना इब्राहिम से कि अन्य जाति के लोग भी तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। इसलिए परमेश्वर की इच्छा शुरू से यह रही है कि विश्वभर के सारे लोग परमेश्वर के बन जाएं, और इसलिए समय का पूरा होने पर यीशु मसीह को भेजा था। और यीशु मसीह को भेजने के बाद परमेश्वर ने एक बात, एक गुप्त बात प्रकट की है इफिसियों की पत्री में। हम वहां पर लौट जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था, इफिसियों की पत्री का 2 अध्याय में। बाय द वे, इस इफिसियों की पत्री में बहुत सारी गुप्त बातें हैं, many mysteries in the book of Ephesians। इस 2 अध्याय का शुरुआत में परमेश्वर कहता है कि हम अपने पापों और अपराधों के कारण मरे हुए थे, लेकिन परमेश्वर जो दयालु है, हम पर अपनी दया या करुणा प्रकट की कि हम जब मरे हुए थे हमें जीवित किया। ये सब कहने के बाद 14वां पद में कहता है, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को, यानी यहूदियों को और अन्य जातियों को, 14वां पद 2:14, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। यानी विश्वास, यानी यहूदियों और अन्य जातियों के बीच में जो दीवार थी उसको परमेश्वर ने हटा दिया। पहले परमेश्वर तक पहुंच सिर्फ यहूदियों के पास, सिर्फ यहूदी लोग परमेश्वर को पुकार सकते थे, लेकिन अब हम भी जो अन्य जाति थे परमेश्वर को पुकार सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उस दीवार को गिरा दिया। और वो दीवार कैसे गिरी? यीशु मसीह के क्रूस पर अपना जीवन देने के कारण, और हमारे यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण अब वो दीवार नहीं रही। यानी जो कुछ परमेश्वर ने इस्राएलियों से वादा किया था वो पूरी तरह हमारे लिए है, क्योंकि हम उन आशीषों के वारिस हैं। 15वें पद में लिखा कि और अपने शरीर में बेर अर्थात वे व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। तो परमेश्वर की इच्छा रही है कि यहूदी और अन्य जाति लोग मिलकर परमेश्वर के लिए एक मनुष्य बन जाए, यानी चर्च जिसमें यहूदी भी हो और अन्य जाति के भी लोग। ये पूरा हो रहा है। विश्वभर में यहूदी लोग यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं, और उसको देखते हुए हमें समझ आता है कि समय काफी नजदीक है। यीशु मसीह कब लौट कर आएगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना समझ आता है कि नजदीक है, और हम सब उस जुबली के साल की ओर बढ़ रहे हैं कि हम सब उन दिनों को देखेंगे जो हमने प्रेरितों के कामों में सिर्फ पढ़ा है, अब हमारे साथ होगा, हमारी कलीसिया में होगा। और जहां तक हमारे देश की बात है, जो कुछ भी हो रहा है उससे परेशान नहीं होना चाहिए हमें, क्योंकि फिलहाल हमें नहीं समझ आ रहा है। जब तक हम परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे हमें नहीं समझ आएगा, पर इतना पता है कि परमेश्वर हमारे देश के लिए भी कुछ खास कार्य कर रहे हैं। इसलिए फिलहाल जो आर्थिक अवस्था है उसको देख के हम परेशान ना हो, और बाकी चीज़ों को देखते हुए भी हमें परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो सचमुच मसीह है वो मसीह बनकर रहेगा, और जो झूठा मसीह है वो सब लौट कर जाएगा। ये समय आने वाला है जैसे हम प्रेरितों के कामों में देखते हैं। तो आज का अध्ययन से हमें कुछ बातें समझ आई होगी, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर का वचन जो है, परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर के विचार है, और जो परमेश्वर कहता है वो पूरा होगा। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। जब हम इतिहास को देखते हैं कि जो कुछ उसने वादा किया है पूरा हुआ है, और आने वाले समय के लिए जो वादा किया है वो भी पूरा होगा। इसके साथ हम आज का अध्ययन को समाप्त करेंगे।